तीर वनचारी यमुना तीर यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन गज जन रंजना यशोदानंदन गज जन रंजना यशोदानंदन गज जन रंजना यशोदानंदन गज जन रंजना यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 बो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पार्वती गौरनिताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय जय राधा पार्वती गौरनिताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव जगजोजलप्रपाद की आई गौर प्रेमानंदे हरि 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 वो
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा पारसार्थी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू दे सिंबल डिवोटी ऑल ग्लोरीज टू दे सिंबल डिवोटी ऑल ग्लोरीज टू दे सिंबल डिवोटी जय श्रील प्रभुपाद। नमाओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित्रिवत्सलः। विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सतीम्। विदुर उवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित्रिवत्सलः। विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सतीम्।
हरे कृष्ण।
भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित्रिवत्सलः विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सतीम्।
हरे कृष्णा। जो भक्त हैं पुरुष भक्त हैं उनसे प्रार्थना कृपा करके आगे आ जाएं और माताएं थोड़ा पीछे रहें बीच में रास्ता बनाने के लिए। हरे कृष्णा।
विदुर उवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित्रिवत्सलः विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सति। विदुर उवाच
शरीर त्याग दिया। ये विदुर जी का प्रश्न है। झगड़ा का कोई कारण ही नहीं दिखता है। द्वेष तो तब होगा कि कोई कठोर वचन बोलेगा। शिव जी ने कभी अपने ससुर को एक शब्द भी बुरा भला नहीं कहा, दक्ष को कभी बुरा नहीं बोले, और अपनी पुत्री से वो प्रेम करता था तो उस नाते से अपने दामाद से भी प्रेम करेगा, तो फिर द्रोह क्यों हुआ, द्वेष क्यों हुआ? विद्वेषम अकरोत कस्मात, क्यों द्रोह किया? शिव जी के साथ द्रोह करने से तो उसने अपनी बेटी का भी अनादर किया ना, उसके अनादर से ही वो दुखित होकर के आत्महत्या कर ली। तो जो निर्वैर हैं, किसी के प्रति वैर नहीं है और सबके मंगल की कामना करते हैं, ऐसे भगवान शिव के प्रति उनका ससुर फादर इन ला क्यों द्रोह किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये द्रोह चालू हो गया, एक बार प्रजापतियों ने मिल करके, मतलब स्वर्ग में जो ऊंचे अधिकारी हैं, उन सब ने मिल करके एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में भगवान विष्णु आए, ब्रह्मा जी आए और सारे ऋषि मुनि आए। भगवान शिव भी आए थे। सबसे अंत में दक्ष प्रजापति उस यज्ञ में प्रवेश किए। तो बहुत बड़ी सभा थी यज्ञ की, और दक्ष प्रजापति उस समय सभी प्रजापतियों के नायक बना दिए गए थे ब्रह्मा जी के द्वारा। इस ब्रह्मांड में वे सुप्रीम पद पर थे। तो इस कारण उनका अभिमान बढ़ गया था, उनके मन में यह बात खलती थी कि मैं ससुर हूं और फिर भी शिव की इतनी पूजा क्यों होती है, शिव का इतना आदर क्यों होता है, तो हमारा दामाद है, हमसे छोटा है। इस बात से वे कुढ़ते थे कि शिव का इतना सम्मान क्यों हो रहा है। तो जब सभा में आए तो सब लोग खड़े हो गए, ब्रह्मा जी और भगवान को छोड़ करके सब लोग खड़े हो गए, तो साथ में शिव जी भी खड़े नहीं हुए। तो शिव जी बैठे रह गए, दक्ष प्रजापति शिव जी के सामने ही अपने पिताजी को प्रणाम किए, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके और आसन पर बैठे। तो दक्ष प्रजापति बैठे थे और भगवान शिव चुपचाप रह गए और उनको उठकर प्रणाम नहीं किए। और दक्ष प्रजापति भरी सभा में अपना अपमान समझे कि लोग क्या कहेंगे, कैसा नालायक दामाद है कि ससुर को प्रणाम नहीं किया। तो दक्ष प्रजापति ये सोच करके बहुत उद्विग्न हो गए और उस महती सभा में शिव जी को गाली देना चालू किए और माइक पकड़ करके लाउड स्पीकर पर बोल रहे थे। कहते थे, मैं द्वेष से नहीं बोल रहा हूं और मैं अज्ञान में नहीं बोल रहा हूं, सुनिए मेरी बात, सब लोग सुनिए। सूर्यतम सबसे पहले कहा, सुनिए ध्यान से, मैं बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूं। वे बोल रहे थे द्वेष में और अज्ञान में, शिव जी में दोष निकाल रहे थे और इसको कहे कि हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई गलती नहीं, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई गलती नहीं बोल रहे, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई गलती नहीं बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई गलती नहीं बोल रहे हैं। कैसी आंख होती है वैसे सुंदरी हमारी बेटी है सती, और यह बंदर अंखा, ये कभी स्नान नहीं करता है और कभी सोडा साबुन लगाया नहीं, साबुन तो देखा भी नहीं, ये और स्नान क्या करेगा, चिता भस्म लगा लेता है, ये मुर्दे की राख लगाता है, तो विवाह से पहले भी लगाते थे ना। ये तो ऐसा है कि कोई व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह करके और लास्ट में पूछे कि बबुआ तू कौन जात के हवा, तुम कौन जात के हो, ये विवाह करके जाति पूछते हैं। तो इस तरह से दक्ष प्रजापति की तो बुद्धि उल्टी हो गई थी, शिव जी में अनेक दोष आविष्कार कर रहे हैं, यह कुरूप है, यह स्नान नहीं करता है, यह श्रृंगार नहीं करता है, देख रहे हैं ये सभा में सांप लपेट करके आ गया है गले में, और सभा में ऐसे आ जाता है त्रिशूल उठा करके चला आया, ये त्रिशूल धारण करता है, सांप लपेटता है गले में, चीता की राख लगाता है, और इसका कहीं घर है, कहीं घर में यह श्मशान ही इसका घर है। कोई आचरण नहीं है, कोई क्रिया नहीं करता अच्छा काम, श्मशान में रहना और मुर्दों की माला पहनता है, मुंडों की माला, इस तरह बहुत बातें बके और ब्रह्मा जी पर भी दोषारोप कर दे कि इन महाशय के कहने से मैं अपनी बेटी को नष्ट कर दिया, इसके साथ विवाह दिया, मतलब मेरी बुद्धि ठीक थी, मेरे बाप की बुद्धि खराब थी। वास्तव में ब्रह्मा जी ने कहा था दक्ष प्रजापति को कि अपनी पुत्रियों की शादी इससे करो, इससे करो, इससे करो, तो सबसे बेस्ट वर मिला था शिव जी, शिव जी सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन आज दक्ष सबसे बुरा कह रहा है शिव जी को, और वह केवल प्रणाम नहीं करने के कारण। तो दक्ष इस तरह से गाली दे करके और अंत में कह दे कि आज से देवताओं के लाइन में बैठ करके यज्ञ भाग ग्रहण नहीं करेगा, मतलब शिव जी का जो वेतन है वो भी बंद कर दिया। वो तो मालिक था प्रजापतियों का, नायक, तो उसने साथ दिया कि आज से शिव को कोई भी यज्ञ भाग नहीं मिलेगा, और ये कह करके चला गया। दक्ष प्रजापति सभा से बाहर हो गया। तो शिव जी का ऐसा अपमान देख करके नंदीश्वर फिर दक्ष को साप देने लगे, वो भी पागल हो गए थे, अब नंदीश्वर भी सबको साप देने लगे, दक्ष को निमित्त बनाकर सभी ब्राह्मणों को साप देने लगे। जो भी शिव जी के द्रोही हैं तो आज से मैं साफ देता हूं कि सभी ब्राह्मण भक्षा भक्ष खाएं, कुछ भी विचार ना करें और स्त्रियों में आसक्त रहें। ये शिव जी की निंदा करता है। नंदीश्वर जी ने कहा कि जो शिव के निंदक हैं वे सभी पाखंडी हो जाएं और ब्राह्मणों को साथ दिए। दक्ष प्रजापति ब्राह्मणों के नायक थे, तो ब्राह्मण सभी आज से भीख मांगे हो, सभी भीख मांगने के लिए डोले घर घर। और ये जो भी व्रत करें, तप करें, स्वाध्याय करें, इसके पीछे इनका हमेशा यही हो कि हमें कुछ मिल जाए खाने को, परिवार चलाने को। इनमें तत्व ज्ञान नहीं हो, कर्म कांड में फंसे रहे। जब नंदीश्वर ने ऐसा साप दिया तो उधर से दक्ष प्रजापति के तरफ से भृगु जी खड़े हो गए। भृगु जी लगे कहने, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग वेद के अनुसार चलते हैं, तो जो ब्राह्मणों की निंदा करे वो नरक में जाए। और भी एक दो बात कहे कि हम लोगों के इस वेद के प्रमाण हैं भगवान जनार्दन, भगवान विष्णु, वही परम प्रमाण है। तो इस बात को सुन करके फिर भृगु जी चुपचाप हो गए। भृगु जी बोल रहे थे दक्ष प्रजापति की तरफ से, तो जब भगवान विष्णु का नाम लिए तब शिव जी ने सोचा कि अब नंदीश्वर कहीं भगवान के बारे में गलत न बोलने लगे, इसलिए वे चुपचाप उठ करके चले गए। शिव जी जब सभा से चले गए तब नंदीश्वर भी चले गए। तो भृगु जी ने बहुत विशाल साप दिया कि शिव के अनुगामी सभी पाखंडी हो जाएं, सभी माला मुंडमाल पहने या भस्म लगाएं, गांजा पीते रहे। ये भृगु जी ने साप दिया था, ये शिव के पूजक ऐसे ही बिना नहाए धोए रहे, गांजा संजा पीते रहे और बम बम करते रहे, ये पाखंडी हो जाए। तब शिव जी उठ करके चले गए, फिर नंदीश्वर भी चले गए। यहां से शुरुआत हुई शिव जी के साथ दक्ष प्रजापति का द्वेष, यहां से चालू हुआ। वो यज्ञ हुआ था विश्व शांति के लिए और अशांति यहीं से चालू हुई। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शांति के लिए यज्ञ हुआ था और यह अशांति का बीज पड़ गया। दो महान शक्तियों में झगड़ा हो गया, शिव जी में और दक्ष प्रजापति में। तो इस कारण से दक्ष प्रजापति अपनी बेटी को नहीं मानते थे। शिव जी के साथ विवाह हुआ था, इस कारण से शिव जी के चलते अपनी बेटी को भी विसार दिए। तो एक दूसरा यज्ञ किए दक्ष प्रजापति, बहुत बड़ा यज्ञ, तो उसमें सबको निमंत्रण दिए लेकिन शिव जी को नहीं, और शिव जी के कारण अपनी बेटी को भी यज्ञ में नहीं बुलाए। बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ, बहुत बड़ा, लेकिन उसमें शिव जी को निमंत्रण नहीं दिए, बेटी को नहीं बुलाए। तो उनकी बेटी सती जी कैलाश पर्वत पर बैठी थी पति के साथ, तो देखी कि बहुत से विमान जा रहे हैं कैलाश से होते हुए। तो सती जी ने पूछा अपने पति से, भगवान शिव से, ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उसी में सब लोग जा रहे हैं, सब देवता। तो सती ने बड़े ध्यान से सुना उन लोगों की बातचीत, और ऊपर से कुछ देवता कागज भी गिरा दियो, पंपलेट था। तो सती जी इसको देख करके कहती हैं भगवान शिव से, हे नाथ, आपके फादर इन ला, आपके ससुर अब मेरे पिता नहीं कह रही है, आपके ससुर के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ महोत्सव होने वाला है और सभी देवता वहीं जा रहे हैं। इनके साथ इनकी पत्नियां जा रही हैं, कितनी सजी हैं, सज धज करके, श्रृंगार करके और मधुर कंठ से गीत गाती हुई जा रही थी विमानों पर स्त्रियां। तो सती की इच्छा हो गई कि मैं भी पिता के यहां जाऊंगी। अपने पति से निवेदन करने लगी कि आपके ससुर के घर बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, हो रहा है, चालू है, तो यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें, हम वहां चलेंगे। तो भगवान शिव ने कहा वहां जाकर के क्या करोगी। तो सती ने कहा वहां जाएंगी तो हमें मेरी बहनों से भेंट होगी, हमारी सभी बहनें आएंगी, अपने अपने पतियों के साथ वे आएंगी। तो मेरी इच्छा है कि उस महोत्सव में मैं जाऊंगी आपके साथ, तो हमारी माँ, हमारे पिताजी हमको बहुत सा उपहार देंगे, पारिवर्ह देंगे, उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। एक लड़की के मन में स्वाभाविक इच्छा होती है कि हमारे माता पिता हमको देंगे, स्नेह करते ही थे। ये सबसे छोटी बेटी थी तो इस आशा थी कि हमारे पिताजी स्नेह करेंगे, हमसे बहुत स्नेह किए हैं तो हमको वे कुछ अलंकार देंगे, वस्त्र देंगे, इस तरह से भेंट देंगे। सारी दुनिया में सब जगह सभी को दे रहे हैं तो अपनी बेटी को क्यों नहीं देंगे, आप चलिए हमारे साथ। और उस यज्ञ में निश्चित ही हमारी बहनें आएंगी और हमारी मौसी भी आएंगी। इनकी दो मौसी थी, आकुति और देवहूति, प्रसूति इनके माँ का नाम था। तो मेरी माँ मुझसे बहुत स्नेह करती है, मुझे उपहार देगी और हमारी मौसी भी आएंगी, बहुत दिन हो गया भेंट हुए तो वहाँ सबसे भेंट हो जाएगी, इसलिए चलें। बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ में वेद मंत्र पढ़ते होंगे, उसे सुनूंगी, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो कई तरह से कह रहे कि वहां बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत सुंदर कथाएं होंगी ऋषि मुनियों द्वारा, तो हम लोग सुनेंगे और सबसे भेंट होगी परिवार के लोगों से। एक लड़की का संबंध दो परिवार से रहता ही है, पति के परिवार से और पिता के परिवार से। तो पति के परिवार में तो कोई है नहीं, अभी नंग धड़ंग अकेले घूमते हैं शिव जी। तो पिता का परिवार बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा समाज है, वो बहुत बड़ा फेस्टिवल कर रहे हैं, तो वहाँ जाने की इच्छा होना स्वाभाविक है। वो बेचारी सती ललाई थी, भगवान शिव से कही कि आपको तो कोई आश्चर्य नहीं होगा लेकिन हमें बहुत बड़ी भारी आश्चर्य है, ये सारा आश्चर्य से भरा हुआ जगत आपने बनाया है, आपके लिए कोई यज्ञ बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है लेकिन हमारे लिए बहुत उत्सुकता है, मैं देखना चाहती हूँ, सबसे मिलना चाहती हूँ, मैं अपनी जन्मभूमि पर जाना चाहती हूँ। परंतु आपके साथ जाना चाहते हूँ, आप चलिए। संबोधन करते हैं, आप सीति कंठ हैं, आपका कंठ नीला है, नीलकंठ, तो आप दूसरे के हित के लिए, जगत की रक्षा के लिए 20 तक भक्षण किए हैं, 20 पी लिए हैं, तो मेरी बात मानिए, अपने पत्नी की बात मानिए, आप मेरे साथ चलिए यज्ञ में, और प्रमाण दे रहे हैं कि आप मुझको बहुत मान दिए हैं, आप प्रेम करके मुझको अपने आधे अंग में रखते हैं, गोद में बैठाए रखते हैं, इसलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं। अर्धनारीश्वर जिनके आधा अंग नारी का है, तो आधे अंग में वही पार्वती जी ही हैं, तो अर्धनारीश्वर जो अपनी पत्नी से इतना स्नेह करता है, वो पत्नी की एक बात क्यों नहीं मानेगा, तो आप जरूर हमारी बात मानेंगे, आप चलिए। लेकिन भगवान शिव को तो वो बात याद थी कि सभा में जो दक्ष प्रजापति ने कहा था कि तुम कभी हमारे आंख के सामने मत होना, ना लायक कहीं के, दक्ष ने यहां तक कह दिया था तुम आते हो ये ठीक नहीं है, तब से भगवान शिव ससुराल गए नहीं थे और उनकी पत्नी भी नहीं गई थी अपने मायके, तो आग्रह करे थे चलिए चलिए चलिए, भगवान शिव ने कहा कि निमंत्रण नहीं हुआ है, तो सती ने कहा कि अपने पिता के यहां जाने में निमंत्रण की क्या जरूरत है, वो बहुत काम होगा यज्ञ में फंस गए होंगे, याद नहीं आया होगा, इसलिए निमंत्रण नहीं दिए, कि निमंत्रण की क्या आवश्यकता है, चलिए बिना निमंत्रण के ही। भगवान शिव ने कहा कि जा सकते हैं लेकिन अपने बंधुओं के पास, लेकिन तब जब दोष दृष्टि न हो, तुम्हारे पिता की मेरे प्रति दोष दृष्टि है, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं है। और भगवान शिव ने भी कह दिया तुम वहां यदि जाओगी मेरी बात की अवहेलना करके, तो वहां तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, अब समय बदल गया है, मेरे साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, इसलिए अब तुम्हारा आदर नहीं होगा, तुम इस भरोसे मत जाओ कि मैं छोटी बेटी हूं, मुझसे बहुत स्नेह है, अब स्नेह नहीं है, और जब अपने स्वजनों के द्वारा किसी व्यक्ति का तिरस्कार होता है, अपमान होता है, तो मरण जैसा लगता है, व्यक्ति मर जाता है, तो भगवान शिव ने भविष्यवाणी कर दिया कि यदि तुम जाओगी वहां तो तुम आत्महत्या कर सकती हो, इसलिए नहीं जाना ठीक है, जब तुम्हारा पिता तुमसे बात नहीं करेगा, तुम्हारा आदर नहीं करेगा, तो तुम जीवित नहीं रहोगी, मर जाओगी, आत्महत्या कर लोगी, इसलिए मत जाओ। लेकिन सती के लिए रुख पाना कठिन हो गया। वो शिव जी पर क्रोध से देखने लगे, ये क्यों नहीं मेरी बात मान रहा है। तो कभी घर के अंदर जाती थी, घर मतलब उस वृक्ष के नीचे, कभी निकल करके बाहर जाती थी। कुछ दूर जाने के बाद सोचती थी नहीं, बिना आज्ञा के नहीं जाना चाहिए, तो लौट आती थी। इस तरह से कभी बाहर कभी भीतर, घड़ी के पेंडुलम की तरह जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, और अंत में चल दी अकेले। इस संसार में किसी स्त्री को, अपनी पत्नी को बस में रखना बहुत कठिन है। भगवान भी परेशान हो गए, भगवान शिव भी परेशान हो गए। अंत में जब उन्होंने देखा कि ये अब नहीं मानेगी, तो उन्होंने सोचा कि यही ठीक है, वहीं जा करके मर जाए ठीक। अगर यहाँ रोकूंगा, जबरदस्ती रोकूंगा, तो यहाँ भी मर सकती है, यहाँ जहर खा लेगी या पेट्रोल छिड़ी करके जैसे तैसे आत्मदाह कर लेगी। तो इसके चलते संसार में बदनामी भी होगी, इसका पिता ऐसे ही खौफ है तो केस करेगा या कुछ करेगा, इसे बेटर है कि अपने पिता के यहां ही जा करके मर जाए। तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, और हुआ वही जो भगवान शिव ने कहा था। वो गई वहां, किसी ने जब समाचार नहीं पूछा, एक माता को छोड़कर, बहनों को छोड़कर कोई नहीं मिला। दक्ष प्रजापति के डर से किसी ने स्वागत नहीं किया। जब दक्ष प्रजापति सामने देखा, लेकिन ये भी नहीं पूछा कैसे आई, कैसे हो बेटी, कुछ नहीं पूछा। तब सती इस अपमान को सह नहीं पाई और योगाग्नि से अपने शरीर को जला दिया। उसके बाद शिव जी ने उस जग को विध्वस्त किया वीरभद्र के द्वारा। दक्ष का वध हो गया। ये बहुत लंबी कथा है। इस तरह से जमाता में, दामाद में और ससुर में द्वेष चलता रहा। ये खास करके स्त्रियों का अपमान नहीं होना चाहिए, वे अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और जिससे प्रेम किए हैं, जिस बच्चे से स्नेह किए हैं, तो उससे उचित स्नेह देना ही चाहिए, नहीं तो उसका हृदय कमजोर होता है, हृदय पर धक्का लगता है। सती जो इतनी महान स्त्री थी, वो अपने अपमान को सह नहीं पाई, अपने पिता के दुर्व्यवहार से वो असमय में मर गई। भगवान की पत्नी हो करके भी, मतलब शिव जी से बड़ा कौन है, वे भी कंट्रोल नहीं कर पाए। समझा बुझा करके हार गए, वो समझी नहीं कि स्त्रियों में जो जिद हो जाती है तो ब्रह्मा के लिए भी कठिन होता है समझा मान। तो इस प्रकार सती जी असमय में, जवानी में ही शरीर छोड़ दे, इसीलिए कोई संतान नहीं हुआ। इसके बाद वे जन्म ली हिमालय में पार्वती के रूप में, तो पुनः भगवान शिव के साथ ही विवाह हुआ। तो इससे दो पुत्र हुए, एक कार्तिकेय और दूसरे गणेश जी। पर दूसरे शरीर से, पार्वती शरीर से, सती देह से कोई पुत्र नहीं हुए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज ने बहुत ही रोचक तरीके से जो कथा थी आगे जो आने वाली है संक्षेप में बतलाई है, इसीलिए महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें महाराज ने बहुत बहुत अच्छा ये जो है बिंदु समझाया कि दक्ष ने जो है अपनी बात बोलने के पहले ये घोषणा की कि मैं द्वेष पूर्वक नहीं बोल रहा हूं, और जबकि उनके अंदर द्वेष था। तो अगर मान लिया जाए कि द्वेष नहीं है और वो शिष्टाचार की बात बोल रहे हैं, लेकिन तो भी उसमें एक बात है जो जिस पर उन्होंने विचार नहीं किया कि शिव जी जो है दक्ष से बहुत सीनियर हैं, पहले से ही सीनियर हैं। ब्रह्मा जी के वो बड़े पुत्र हैं, चार कुमारों के बाद उन्होंने जन्म लिया। वैसे शिव तत्व तो बहुत ऊपर है जीव तत्व से, तो इसलिए ब्रह्मा जी से भी बहुत ऊपर है तत्व की दृष्टि से। लेकिन अगर वैसे भी देखा जाए सामाजिक स्थिति में भी, तो ब्रह्मा जी से के जो है चार कुमारों के बाद उनका जन्म हुआ, और फिर ब्रह्मा जी से फिर दक्ष का जन्म तो बहुत बाद में हुआ। तो शिव जी तो बहुत सीनियर हैं उस दृष्टि से। तो जो व्यक्ति अपने से पहले से बड़ा है और अपनी पुत्री का विवाह अगर करे उससे, तो वो छोटा नहीं होता, वो बड़ा ही रहता है। और जो व्यक्ति पहले से छोटा है तो अपनी पुत्री से विवाह करने के बाद वो छोटा माना जा सकता है। तो यहां पर जो समस्या है वो यही है कि दक्ष ने इस बात पर विचार नहीं किया कि शिव जी की स्थिति सामाजिक रूप से भी पारिवारिक रूप से भी वो बहुत ऊपर है, दक्ष से बहुत ऊपर है। जैसे कि भगवान कृष्ण ने भी जो है जामवान को पराजित किया था, तो जामवान ने जब जो है अपनी पराजय स्वीकार की और अपना अपराध माना, तो भगवान कृष्ण को अपनी पुत्री जामवती से विवाह किया। तो उस समय फिर जो है जामवान ने भी भगवान के चरण छुए, और हमेशा के लिए ससुर जो है वो दामाद से दामाद जो है ससुर के द्वारा सम्मानित होता है। तो इस प्रकार की विधि है। तो वो जो दक्ष ने समझा नहीं इस बात को, इसलिए दक्ष ने जो है ये अपराध किया, और वो अपराध फिर वो बहुत बड़ा वैष्णव अपराध बन गया। और आगे फिर जो है बड़ी शिक्षा पर ये सब घटनाएं हैं कि कैसे जो है ये अपराध कोई व्यक्ति अगर करता है और करता जाता है तो फिर वो बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, और फिर उसका जो है बड़ा दुष्परिणाम होता है। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना है? हाँ जी आप। हरि बोल।
हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू, बहुत बढ़िया क्लास दिया, थैंक यू। मुझे एक प्रश्न था, लॉर्ड शिव जी जो परम वैष्णव है और भृगु मुनि ये भी एक वैष्णव है, तो हमको ये सिखाया जाता है कि वैष्णव की निंदा हमको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। भृगु मुनि जो हम जैसे कथा से हम जानते हैं कि वो ब्रह्मा शिव और विष्णु में से कौन ग्रेट है, ये पता करने के लिए भृगु मुनि को चुना गया था। तो उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो भृगु मुनि एक वैष्णव है, तो भृगु मुनि फिर से काउंटर कर्स क्यों करते, फिर से श्राप क्यों देते हैं इनको, जबकि गलती दक्ष प्रजापति की थी।
वहां पर वैष्णव अवैष्णव का सवाल नहीं है, क्रोध हो गया दोनों पक्ष को, क्रोध के बस में वो लोग बोल रहे हैं। ये जग कराने वाले ऋत्विक थे दक्ष प्रजापति के जग में, भृगु जी, तो नंदीश्वर साप दिए सभी ब्राह्मणों को, इसलिए भृगु जी को भी क्रोध आ गया। वैष्णव है तो वैष्णव में क्रोध आ गया, ये तो दोष है, लेकिन वैष्णव है तो उसमें क्रोध नहीं आएगा ये कहा नहीं जा सकता। वैष्णव है लेकिन क्रोध के बस में हो गए। भगवान गीता में कहते हैं जो व्यक्ति मरने से पहले काम और क्रोध को जीत ले वही जुक्त है, वही सुखी है। स जुक्त स सुखी नरा। तो भृगु जी भगवान के भक्त हैं, लेकिन शिव जी के प्रति अपशब्द बोले नंदीश्वर की बात सुन करके, अब मुंह खुल गया दोनों पक्ष। वो भी वैष्णव थे, ये भी वैष्णव। वैष्णव लोग भी तो कभी कभी जूझ जाते हैं ना। तो कर्मकांड व्यक्ति को पूर्ण शुद्ध नहीं कर पाते हैं। जब सब कुछ त्याग करके कोई व्यक्ति भगवान की शरण लेता है तो उसकी परम शुद्धि होती है। लेकिन ये भृगु जी कर्मकांड में रत रहते हैं, यज्ञ जाग आदि कराते रहते हैं। जो ब्राह्मणों के प्रति ममता है और शिव जी के दल के प्रति द्वेष है, अभी राग द्वेष रह ही गया। राग द्वेष से रहित होना चाहिए। भगवान गीता में इसको बार बार कहे हैं, इंद्रियसिंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितः तय न बसमा गच्छे तो यस्य परिपंथिन। राग और द्वेष के बस में नहीं होना चाहिए, ये जीव के परिपंथी हैं, ये चोर की तरह हैं, हमारा विवेक लूट लेते हैं। उस सभा में जब गाली गलौज होने लगा तो अब उस समय विवेक नहीं रहा कि दूसरा गाली दे रहा है तो मैं गाली द्वारा ही शांत करूं, ये विचार आ गया। अब नंदीश्वर साप दे रहे तो भृगुज भी साप देने लगे, साप बाजी होने लगी। अब भगवान शिव चुप से उठे और चल दिए कि अब बहुत बात बढ़ रही है। जो भी हो, भगवान की ऐसी माया है, राग द्वेष जहां रहता है वहां पर क्या कोई बोलेगा, उचित अनुचित का ध्यान नहीं रहता। और व्यक्ति यही समझता है कि मैं जो बोल रहा हूं वही उचित है। जैसे दक्ष प्रजापति कहे कि मैं अज्ञान से या द्वेष से नहीं बोल रहा हूं। तो जो दक्ष प्रजापति में जैसा ज्ञान था वो तो बहुत बढ़ा हुआ था, वो तो केवल प्रणाम नहीं करने से शिव जी में हजारों दोष निकालने लगे। शायद प्रणाम कर दिए होते शिव जी तो सब ठीक था। तो इसी तरह से भृगु जी वेद मंत्रों के ज्ञाता हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन अपने को संभाल नहीं पाए। ब्राह्मणों का तिरस्कार हुआ तो इसलिए वे तिल मिला गए और बहुत कठिन साप देने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं, ब्रह्म दंडम दुरत्यम, दुरत्ते ब्रह्म दंड दिए, ब्रह्म साप। भृगु जी के साप से शिव जी के उपासक सब अवघड़ जैसे होते हैं, बहुत गंदा रहते हैं। तो यह दुरत्ते ब्रह्म साप था। ब्राह्मण का दिया हुआ साप, साप देना या गाली देना ये वैष्णव का गुण नहीं है। वैष्णव को तो नम्र होना चाहिए। वैष्णव वास्तव में शंकर भगवान हैं, सबसे बड़े वैष्णव। लेकिन अब उनके साथ रहने वाले नंदीश्वर शिव जी की निंदा करने से दक्ष पर क्रोधित हो गए। वे बोलने लगे, आकाश पताले करने लगे। जब वे बोलने लगे तो भृगु जी भी पैजामा से बाहर हो गए, वो भी बोलने लगे। वैष्णव को आक्रोश से, क्रोध से और राग से बचना चाहिए। भगवान गीता का उपदेश किए हैं तो वैष्णवों के लिए ही किए हैं, भक्तों के लिए ही किए हैं। अर्जुन को कहा तो तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे प्रिय हो, तुमको मैं दिव्य ज्ञान दे रहा। तो उससे भी समझना चाहिए कि ये भगवान के भक्तों के लिए ही है। और भगवान हमेशा कहते हैं अपने काम को, क्रोध को रोकना चाहिए। ये नरक के द्वार हैं, कामम क्रोधस तथा लोभ तस्मादेत त्रयम तेजेत, काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं। थोड़ा सा पैर पड़ा बस नरक में गिरेंगे, भगवान कहते हैं। इसलिए अपनी रक्षा करनी चाहिए भगवान के उपदेश से और भगवान के नाम से। समय हो जाए तो बंद करना चाहिए। आप लोग देखिएगा 9 बजे तक प्रसाद का टाइम है। इसमें छपा हुआ है कागज पर, इसलिए मैं बोल रहा हूं।
कृष्ण महाराज प्रणाम। महाराज महाराज पार्वती जी दुर्गा जी जो है माया शक्ति है, तो उनके साथ जो ये घटना हुई ये माया के द्वारा हो रही है या किसके द्वारा हो रही है, ये किसके कंट्रोल में?
कैसे घटना हुई तो मैं सुनाया ही, भागवत में पढ़ना चाहिए। वो अपने परिवार के लोगों में राग रखती थी, मिलना चाहती थी माँ से, मौसी से, बहनों से, और पति की बात नहीं मानी, चली गई। विवाह के बाद किसी भी लड़की का सब कुछ पति ही होता है, पति की बात माननी चाहिए। माँ से भेंट करे, कभी माँ बीमार पड़ गई या कमजोर हो गई तो उससे जाकर सेवा कर सकती है, पिता की सेवा कर सकती है, लेकिन पति की बात की अवहेलना करके नहीं। तो सती ने जो भी किया वत्से ममता से, अपने नैहर के लोगों में अधिक ममता रखी थी, इसीलिए देखना चाहती है। और वस्तुओं में आसक्त कि हमको उपहार मिलेगा, हमको दहेज मिलेगा, आप चलिए चलिए। और शिव जी कहते हैं कि नहीं जाना ठीक है, साफ मना किए कि निमंत्रण भी नहीं है। और निमंत्रण कोई ऐसा नहीं कि बिजी थे उनको याद नहीं आया, जानबूझ करके निमंत्रण नहीं भेजे हैं। और ये सब सुनने के बाद भी उनकी पत्नी सती चली गई, और जबकि सत्य से इतना प्रेम भगवान शिव करते हैं, वो स्वयं कहते हैं कि आप हमको अपने आधे अंग में बैठाए हैं, आपका आधा अंग मैं हूं, अर्ध नारीश्वर, ये कहते भी है, फिर भी पति की बात की अवहेलना करके चली गई। तो दुर्गा जी भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं, माया शक्ति हैं, तो माया शक्ति भी गलती कर सकते है ना। स्त्री के रूप में है तो पति की बात माननी चाहिए। क्या
हरे कृष्णा, जैसे आपने बताया कि इस कथा का तात्पर्य निकला कि अगर आपका अपने घर में सम्मान नहीं होता है तो वो नारकी हो जाता है, वहां जाना दुष्कर होगा आपके लिए। तो अगर भक्तों के साथ ऐसा होता है, कहीं सम्मान नहीं होता है, जैसे गीता में कि हमें मान अपमान से ऊपर होना चाहिए, तो ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए?
मैं समझा नहीं पूरा प्रश्न।
इसी कथा में शिव जी कहते हैं सती को कि अगर आपका सम्मान नहीं होगा आपके घर में तो आप नहीं जाइए वहां पे।
नहीं, जिस आशय से जाना चाहती थी सती, आशा करके कि मेरा सम्मान होगा, और जबकि वहां अब बदल चुका है समय, शिव जी से द्रोह हो गया था, दोष दृष्टि हो गई थी, तो वहां जाना ठीक नहीं था।
तो आज के परिवेश में अगर हमारा कहीं सम्मान नहीं होता है तो भक्त के नाते हमें वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए?
भक्त का आचरण दूसरा होता है और मनुष्य का आचरण दूसरा होता है। जब भक्त अपने को मानेंगे तब भक्त के लिए जो इंस्ट्रक्शन है, गाइडेंस है, उसको पालन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तरो रिव सहिष्णु ना, वृक्ष से वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, तीर्ण से भी अपने को नीच मानना चाहिए और स्वयं मान नहीं चाहना चाहिए और दूसरों को मान देना चाहिए। भक्त का ये व्यवहार है।
तो ये केवल भक्तों के बीच होना चाहिए या बाहर भी जाकर कहीं अपने भौतिक प्रदेश में जाते हैं आप तो वहां भी होना चाहिए कि भक्तों के साथ?
कहीं भी जाए, अगर आपके प्रति दोष दृष्टि है, दोष दृष्टि की बात छोड़ दीजिए, केवल लिख दिया गया हो कि नो एडमिशन, तो वहां जाने की जरूरत क्या है? नो एडमिशन लिखा गया है, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्ते से सावधान रहिए। अगर आप जाएंगे तो कुत्ता काट लेंगे, क्या करेंगे? जब पहले से कोई कह रहा है कि यहां नहीं आना है, यहां नहीं आना है, तो वहां जाने की क्या जरूरत है? जाने के लिए दुनिया खाली है और जगह प्रचार कीजिए। लेकिन जहां कोई देश कर रहा है, अगर भक्त के रूप में जाते हैं तो मान सम्मान को ताखा पर रख कर जाइए। सहिष्णु बन करके, कोई गाली दे कुछ भी करे, हमें तो प्रचार करना ही है। जैसे नित्यानंद प्रभु हरि नाम बुलवाए, मधाई मार दिया, फिर भी वे बुलवा रहे थे। तो भक्त के रूप में यदि हमारा अभिनिवेश होगा तो वो दूसरा दफा लग जाएगा, लेकिन केवल आदमी बनकर के जा रहे हैं। तो भगवान शिव कहते हैं जहां अपमान हो, जहां मान न मिले, वहां नहीं जाना चाहिए। दोष दृष्टि जहां है वहां नहीं जाए। तो भक्त को तो कहीं भी जाना है, जहां मान मिलता है वहां भी जाएगा। अगर कोई कहे आई आइए प्रभु जी दीजिए, ये क्या किताब लिए, हमको भी चाहिए, तो वहां भी जाए। और कोई कहे कि नहीं हट जाओ, यहाँ कोई किताब की जरूरत नहीं है, वहां भी प्रेम से बोलना चाहिए। आप एक बार देखिए, इस पुस्तक को देखने मात्र से आपके पाप कट जाएंगे। ये भगवान की वाणी है, भगवत गीता। आप हाथ से स्पर्श करेंगे तब भी फायदा है, इसका दर्शन करेंगे तब भी फायदा है, और पढ़ेंगे तब तो कहना ही नहीं। इस तरह से प्रेम से बोलना चाहिए। वहां अपने अपमान का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हमारा अपमान हो रहा है। वो कोई ये भी कह दे कि यहाँ खड़े भी मत रहो, फिर भी भक्त हैं तो हमें तो वहां उनको बात कहनी है, आग्रह करना है। लेकिन केवल मनुष्य मात्र हैं तो व्यवहार देखेंगे। अगर भक्त हैं तो वहां दूसरा नियम लगेगा। भक्त तो अपमान का बोध करता ही नहीं है, तो सुनता ही नहीं कि हमारा कोई अपमान कर रहा है। हमें तो बस दृष्टि रखनी है कृष्ण के प्रचार पर। एक महाभारत में कथा है कि गुरु द्रोणाचार्य जी जब अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे धनुर्विद्या की, तो एक पेड़ के शाखा पर एक बनावटी पक्षी रखा गया है, और सबको बाण मारने के लिए कहा गया बारी बारी से। तो गुरु द्रोणाचार्य जी पूछते थे क्या देख रहे हो, तो कहता था बेटे मैं वृक्ष देख रहा हूं और पक्षी देख रहा हूं और थोड़ा थोड़ा आकाश भी दिखाई दे रहा है। तब द्रोणाचार्य कहते थे रख दो धनुष। अंत में अर्जुन की परीक्षा हुई, अर्जुन धनुष बाण लिए, संधान किए, तो गुरु जी ने पूछा क्या देख रहे हो। मैं देख रहा हूं केवल पक्षी की गर्दन, उसका गला देख रहा हूं, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम चलाओ बाण। तो अर्जुन ने मारा, पक्षी का गला कट गया। तो इस तरह अपना लक्ष्य अस्थिर करना है। हमें इसी जीवन में भगवान के धाम में जाना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो उसके लिए मान अपमान क्या है। हमारा मान मिले या अपमान हो, इस पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। कृष्ण का काम होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, नाम का प्रचार, भगवत गीता वितरण करना है, प्रभुपाद जी के पुस्तक को वितरण करना है। हमारा लक्ष्य वो है। ये नहीं है कि हम कहीं चल करके सम्मान पाए या अपमान पाए। सम्मान और अपमान तो होगा ही है, तथा मान अपमान है। भगवान गीता में कहते हैं मेरा भक्त मान और अपमान में सम रहता है। तो इसलिए भक्तों का कहीं भक्त का एक वचन में जह कहीं अपमान हो या मान हो उस पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। अपना काम हुआ, प्रभुपाद जी की बात मैंने कहा, गीता प्रचार किया, कोई गीता ले या न ले इस पर भी ज्यादा विचार नहीं होना चाहिए। हमने प्रयास किया, हमें प्रयास करना है, बस यही हमारे स्मरण श्रेय है कि हमने भगवान कृष्ण का काम किया, प्रभुपाद जी का काम किया। और भगवान तो स्वयं गीता में कहते हैं कि हानि लाभ में सम होकर के काम करो, सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभव जया जय, लाभ में अलाभ में सुख में दुख में सम होकर के करो। तो ऐसे भक्त को रहना चाहिए। स्वयं भगवान ने बताए हैं अच्छा हरे कृष्ण।
Thank you.